एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी किताब और एक उससे भी ज्यादा अनोखे इंसान की बात करने वाले हैं। किताब है पॉल हॉफमन की द मैन हु लव्ड ओनली नंबर्स और ये कहानी है पॉल एर्डोस की।
हाँ, पॉल एर्डोस 20वीं सदी के शायद सबसे विलक्षण, सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे अजीब गणितज्ञों में से एक।
बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ नंबरों और मतलब अमूर्त विचारों के नाम कर दी।
सही कहा। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में जहां इतनी भागदौड़ है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना क्यों जरूरी है?
हाँ, ये बात तो है।
मुझे लगता है एर्डोस की कहानी हमें जुनून के बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि किसी एक चीज के प्रति दीवानगी आपको कहाँ तक ले जा सकती है और शायद सफलता के मायने भी बदल देती है। हाँ, सफलता की एक अलग परिभाषा गढ़ती है। तो आज हम हॉफमैन की नज़रों से एर्डोस के इस असाधारण जीवन को देखेंगे।
बिल्कुल।
उनका गणित में क्या योगदान था और उनका व्यक्तित्व जो किसी पहेली जैसा था, है ना?
बिल्कुल। कैसे कोई इंसान बिना घर, बिना नौकरी, बस एक सूटकेस लेकर दुनिया घूमता रहा और अपने फील्ड में सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंसान बन गया।
ये कमाल की बात है।
और इस कहानी को हम तक पहुंचाया है पॉल हॉफमैन ने।
हाँ, पॉल हॉफमैन।
और दिलचस्प बात यह कि वो खुद कोई गणितज्ञ नहीं है।
अच्छा।
जी हाँ, वो एक जाने माने साइंस राइटर हैं, पत्रकार हैं, पहली डिस्कवर मैगजीन, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इन सब बड़े नामों से जुड़े रहे हैं।
तो फिर ये तो और भी अच्छा हुआ। मतलब एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से वो शायद ज्यादा आसानी से सवाल पूछ पाए होंगे, है ना?
बिल्कुल। उनकी खूबी यही है कि वो मुश्किल वैज्ञानिक या गणितीय बातों को भी आम लोगों के लिए सरल और दिलचस्प बना देते हैं।
और उन्होंने इस किताब के लिए बहुत मेहनत की। सालों तक एर्डोस की दुनिया में रहे, उनके साथ घूमे फिरे, उनके दर्जनों दोस्तों सहयोगियों से बात की।
जी, इसीलिए किताब में एक गहराई है, एक अपनापन सा लगता है। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, उनकी पत्रकारिता वाली नज़र कहानी में जान डाल देती है। वो दिखाते हैं कि उस महान गणितीय दिमाग के पीछे का इंसान कैसा था, उसकी आदतें, उसकी अपनी बनाई हुई भाषा, उसके रिश्ते, सब कुछ।
तो ये किताब सिर्फ एर्डोस की बायोग्राफी नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
हॉफमैन ने एर्डोस के बहाने हमें प्योर मैथ्स की दुनिया की सैर कराई है, वो दुनिया जहाँ लॉजिक और सुंदरता का राज है।
हाँ, और किताब एक बुनियादी सवाल पूछती है कि भाई सिर्फ नंबरों की इस एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देने का आखिर मतलब क्या है?
सही। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि एर्डोस की गणितीय प्रतिभा और उनकी जो एकदम हटके लाइफस्टाइल थी,
हाँ,
वो दोनों अलग नहीं की जा सकती।
बिल्कुल, अविभाज्य थी। ऐसा नहीं कि वो अजीब थे इसलिए गणित में अच्छे थे या गणित में अच्छे थे तो अजीब हो गए।
नहीं
नहीं, उनका पूरा जीवन ही गणित के ताने बाने में बुना हुआ था। उनका फोकस इतना जबरदस्त था कि बाकी सब चीजें जैसे गायब ही हो गईं।
हॉफमैन हमें उनकी पूरी यात्रा पर ले जाते हैं। बुडापेस्ट में उनका बचपन, जहां वो छोटी सी उम्र में ही मुश्किल गणितीय पहेलियां सुलझा रहे थे। फिर उनका वो खानाबदोश जीवन, जब वो दुनिया भर में गणितज्ञों के दरवाजे पर अचानक पहुंच जाया करते थे।
जी, और किताब उनके काम को भी छूती है। नंबर थ्योरी है, कॉम्बिनेटोरिक्स है, लेकिन डराती नहीं है, आम पाठक भी समझ सकता है।
और हाँ, उनकी वो मशहूर आदतें, उनकी अजीब सी भाषा और गणित कम्युनिटी के साथ उनके वो खास रिश्ते।
बिल्कुल। तो ये किताब हर उस इंसान के लिए है जिसे जीनियस लोगों की कहानियों में दिलचस्पी है या जो ये समझना चाहता है कि ज्ञान की खोज इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है।
तो चलिए एर्डोस की इस अनोखी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के बुडापेस्ट से।
हाँ, बुडापेस्ट। उस समय तो वो जगह गजब की थी, गणितीय प्रतिभाओं का जैसे एक केंद्र बन गई थी। जॉन वॉन न्यूमन जैसे कितने ही बड़े नाम वहीं से निकले हैं।
और इसी माहौल में एर्डोस बड़े हो रहे थे। कहते हैं 3 साल की उम्र में ही वो दिमागी कैलकुलेशंस कर लेते थे।
हाँ, लोगों की उम्र सेकंडों में बता देते थे, नेगेटिव नंबर समझ गए थे। उनके माता पिता दोनों गणित के टीचर थे।
लेकिन एक दुखद घटना हुई थी। उनकी 2 बहनों की बचपन में ही मौत हो गई थी।
जी, और उसके बाद उनकी माँ हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई। एर्डोस को स्कूल नहीं भेजा, घर पर ही पढ़ाया।
तो इस परवरिश ने अनजाने में उन्हें बाहरी दुनिया की जो झंझटें होती हैं उनसे दूर रखा। प्रैक्टिकल लाइफ, सोशल स्किल्स, इन सब से वो जैसे कट गए।
बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ सोचने पर, सिर्फ गणित पर लग गई।
माँ के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था और गणित ही उनका खेल, उनका दोस्त, मतलब सब कुछ बन गया।
लेकिन फिर यूरोप में हालात बिगड़ने लगे, यहूदियों पर जुल्म बढ़ रहा था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया,
तो एर्दोश को हंगरी छोड़ना पड़ा।
हाँ, वो पहले इंग्लैंड गए फिर अमेरिका, लेकिन कहीं टिक नहीं पाए। ये जो इंस्टीट्यूशनल माहौल होता है ना, नियम कानून, टाइम टेबल, ये सब उनके बस का था ही नहीं।
और थोड़े सीधे साधे भी थे राजनीतिक मामलों में। मैकार्थी युग में अमेरिका में उन पर कम्युनिस्ट होने का शक हुआ, वीजा मिलना बंद हो गया
जी।
तो इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें वो बना दिया जिसके लिए वो मशहूर हैं, एक भटकता हुआ विद्वान, एक गणितीय खानाबदोश।
और यहीं से उनकी वो फेमस एर्दोश लाइफस्टाइल शुरू होती है।
हाँ बिल्कुल,
वो बिना बताए किसी भी साथी गणितज्ञ के घर पहुंच जाते, दरवाजे पर कहते मेरा दिमाग खुला है।
माय ब्रेन इज ओपन।
मेरा दिमाग खुला है, क्या बात है।
और बस फिर शुरू हो जाता गणित पर काम, दिन में 18-19 घंटे, कॉफी के सहारे, और कभी कभी एम्फिटामिन भी लेते थे।
बाप रे, 18-19 घंटे। हाँ, कुछ दिन या हफ्ते रुकते, एक दो रिसर्च पेपर साथ में लिखते, और फिर अगले शहर, अगले गणितज्ञ के पास। उनका कोई ठिकाना नहीं था।
और इसी से जुड़ा है एर्दोश संख्या का कॉन्सेप्ट, है ना?
हाँ हाँ, एर्दोश नंबर, ये दिखाता है कि वो गणित की दुनिया के नेटवर्क में कितने सेंट्रल थे। खुद एर्दोश का नंबर 0।
अच्छा।
जिन लोगों ने सीधे उनके साथ पेपर लिखा उनका नंबर 1, जिन्होंने नंबर 1 वालों के साथ लिखा उनका 2, और ऐसे ही ये बढ़ता जाता है।
ये तो बड़ा मजेदार है।
ये सिर्फ मजेदार नहीं है, ये दिखाता है कि इंटरनेट आने से पहले भी एक अकेला इंसान कैसे विचारों को जोड़ने वाला, फैलाने वाला सुपर कनेक्टर बन सकता था।
सही बात है, उनका जीवन ही इस बात का सबूत है कि ज्ञान अकेले में नहीं बढ़ता, वो बांटने से, सहयोग करने से बढ़ता है।
बिल्कुल, और ये हमारी उस धारणा को चुनौती देता है कि महान प्रतिभा मतलब अकेले काम करने वाला जीनियस। एर्दोश के बिल्कुल उलट थे।
हाँ वो तो थे। अच्छा, अब जरा उनके काम की बात करते हैं। हॉफमैन बताते हैं कि एर्दोश कोई बड़े सिद्धांत बनाने वाले, मतलब थ्योरी बिल्डर नहीं थे।
नहीं, वो थे प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या समाधान करता। उन्हें मुश्किल, अनसुलझी पहेलियों से जैसे इश्क था।
उनके मुख्य विषय थे संख्या सिद्धांत, प्राइम नंबर्स के रहस्य वगैरह।
जी, कॉम्बिनेटोरिक्स यानी चीजों को गिनने और अरेंज करने का गणित, और ग्राफ थ्योरी जो नेटवर्क्स की स्टडी है।
लेकिन इन तकनीकी बातों से ज्यादा दिलचस्प है उनका गणित को देखने का तरीका।
हाँ बिल्कुल, खासकर द बुक का आइडिया।
हाँ, द बुक, ये क्या था?
एर्दोश का मानना था कि ईश्वर, जिसे वो मजाक में SF यानी सुप्रीम फैसिस्ट कहते थे,
हाँ,
उसके पास एक काल्पनिक किताब है द बुक, और उस किताब में हर गणितीय प्रमेय का सबसे सुंदर, सबसे एलिगेंट प्रमाण लिखा हुआ है।
अच्छा।
और गणितज्ञ का काम सिर्फ किसी तरह प्रमेय को साबित करना नहीं है, बल्कि उस किताबी प्रमाण, बुक प्रूफ को खोजना है, वो तरीका जो सबसे साफ हो, सबसे छोटा हो और सबसे सुंदर हो।
वाह, ये तो गणित को एक कला जैसा बना देता है।
हाँ, यह शायद एक आध्यात्मिक खोज जैसा। ये इस विचार से जुड़ा है कि गणित का आविष्कार नहीं होता, उसकी खोज होती है।
मतलब गणितीय सच पहले से मौजूद है, हमें बस उन्हें ढूंढना है।
बिल्कुल, वो कहीं बाहर हैं, शाश्वत हैं। हॉफमैन कोशिश करते हैं कि पाठक भी उस एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी की एक झलक पा सकें जिसकी एर्दोश पूजा करते थे।
और फिर आता है एर्दोश का निजी जीवन, जो कि अजीबोगरीब किस्सों से भरा पड़ा है।
हाँ, किताब ने बहुत किस्से हैं, कैसे वो रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाते थे, अपना खाना बनाना, गाड़ी चलाना,
यहाँ तक कि संतरे का जूस निकालना या टोस्ट पर मक्खन लगाना भी उनके लिए एक बड़ा काम था।
जी हाँ, वो पूरी तरह से अपने दोस्तों और सहकर्मियों पर निर्भर थे, खासकर रोनाल्ड ग्राहम जैसे लोग थे जिन्होंने सालों तक उनकी जिंदगी की जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उनका ध्यान रखा।
और उनकी अपनी खास भाषा भी थी, है ना?
हाँ बिल्कुल, बच्चे उनके लिए एप्साइलॉन थे, मरना मतलब चले जाना, लीविंग। संगीत को वो शोर कहते थे, और ईश्वर तो SF थे ही।
ये सब बहुत अनोखा है, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है।
हाँ, क्या?
कि सामाजिक रूप से इतने अजीब होने के बावजूद वो शायद इतिहास के सबसे ज्यादा सहयोगी, सबसे ज्यादा कोलैबोरेटिव गणितज्ञ थे।
ये बिल्कुल सही कहा आपने, और बेहद उदार भी थे, अपनी अवार्ड मनी वगैरह जरूरतमंद छात्रों या साथियों को दे देते थे।
हाँ सुना है।
युवा गणितज्ञों को एप्साइलॉन्स को आगे बढ़ाना तो जैसे उनका मिशन था, उनका वो गणितीय नेटवर्क ही उनका परिवार था, सहयोग ही उनके लिए सबसे करीबी रिश्ता था।
तो इस पूरी कहानी से कुछ बड़े थीम्स निकल कर आते हैं।
जी।
पहला तो यही कि प्रतिभा और ये जो विलक्षणता है, अजीबोगरीब होना, ये शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा लगता है जैसे एर्डोस ने जानबूझकर या शायद अनजाने में जिंदगी के बाकी सभी हिस्सों को जैसे आउटसोर्स कर दिया था, ताकि उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ गणित के लिए फ्री रहे।
हाँ, ये सोचने वाली बात है। किसी एक चीज पर गहरा फोकस करने के लिए हमें किन चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है।
सही।
दूसरा थीम है गणितीय सत्य की सुंदरता और उसकी ऑब्जेक्टिविटी का, जैसा कि द बुक वाले आइडिया में दिखता है।
हाँ, एर्डोस के लिए गणित, भाषा, संस्कृति, राजनीति इन सबसे ऊपर था, एक यूनिवर्सल सच जिसकी अपनी एक खूबसूरती थी।
क्या हम सब अपने अपने काम या जुनून में ऐसी ही कोई गहरी अब्स्ट्रैक्ट सुंदरता ढूंढ सकते हैं?
ये एक सवाल उठता है।
बिल्कुल। तीसरा और शायद आज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सहयोग की ताकत।
हाँ,
एर्डोस एक ह्यूमन इंटरनेट जैसे थे, दुनिया भर में आइडियाज और प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करते थे। उनकी कहानी दिखाती है कि महान काम अक्सर अकेले नहीं होते, मिलकर होते हैं।
आज हमारे पास इतने सारे डिजिटल टूल्स हैं कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन क्या वो एर्डोस जैसे पर्सनल गहरे कनेक्शन की जगह ले सकते हैं?
ये एक बड़ा सवाल है। चौथा है एक निष्ठ समर्पण की मानवीय कीमत। एर्डोस ने पारंपरिक जीवन की हर चीज, घर, परिवार, रिश्ते, आराम सब छोड़ दिया।
तो क्या ये जरूरी था? क्या महान उपलब्धि के लिए ये कीमत चुकानी ही पड़ती है?
भारत में भी हम देखते हैं लोग अपने करियर या पैशन के लिए निजी जीवन में कितने त्याग करते हैं। एर्डोस की कहानी इस सवाल को एक्सट्रीम पर ले जाती है।
हाँ बिल्कुल। और पांचवा विषय है उदारता और नई प्रतिभा को सींचना, एर्डोस का युवा गणितज्ञों को आगे बढ़ाना।
जी, वो उन्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करते थे बल्कि एक्टिवली उनकी मदद करते थे, उन्हें चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देते थे, उनके साथ काम करते थे। ये मेंटरशिप के महत्व को दिखाता है, कैसे ज्ञान और अनुभव अगली पीढ़ी तक जाता है।
किताब में एर्डोस के कुछ यादगार कोट्स भी हैं, है ना, जो उनके नजरिए को दिखाते हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे उनका वो मजाकिया अंदाज में कहना कि एक गणितज्ञ वो मशीन है जो कॉफी को प्रमेय में बदलती है।
हाँ, ये सुना है मैंने।
ये उनकी जबरदस्त प्रोडक्टिविटी दिखाता है और शायद काम करने के लिए बाहरी चीजों जैसे कॉफी पर उनकी निर्भरता भी, पर असल बात है काम, यानी प्रमेय बनाना।
और उनका वो सिग्नेचर वाक्य जब वो किसी के दरवाजे पर पहुंचते थे,
मेरा दिमाग खुला है।
हाँ,
माय ब्रेन इज ओपन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनके जीवन का फलसफा था। सहयोग के लिए, नए विचारों के लिए हमेशा तैयार।
और उनका वो पर्सनल मोटो, एक और छत, एक और प्रमाण।
Another roof, another proof.
बिल्कुल। इसमें उनके खानाबदोश जीवन का पूरा सार है। हर नया ठिकाना गणित पर काम करने का एक और मौका। दुनिया उनके लिए बस गणित की खोज का मैदान थी।
और वो एम्फेटामिन वाली शर्त का किस्सा, हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। उनके दोस्त रोनल्ड ग्राम ने शर्त लगाई कि वो एक महीने तक गोलियां नहीं लेंगे। एर्डोस ने शर्त जीत ली।
अच्छा।
लेकिन जैसे ही महीना पूरा हुआ, उन्होंने गोलियां लेना फिर शुरू कर दिया और कहा, देखो, इस एक महीने में मैंने कोई खास काम नहीं किया, तुमने गणित को एक महीने पीछे कर दिया। मतलब गणित सबसे ऊपर था, हर चीज से ऊपर।
हर चीज से।
तो इस असाधारण जिंदगी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में?
हाँ, देखिए, पहली चीज तो शायद है फोकस की ताकत। हम सब एर्डोस नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं।
हाँ, वो तो है।
लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि अपने जरूरी लक्ष्यों के लिए ध्यान कैसे लगाएं, भटकाव कैसे कम करें।
सही कहा। दूसरी सीख है सहयोग और समुदाय बनाने की। ज्ञान बांटने से, दूसरों की मदद करने से, अपने फील्ड के लोगों से जुड़ने से न सिर्फ हमारा काम बेहतर होता है बल्कि एक संतुष्टि भी मिलती है।
एर्डोस का तरीका भले ही बहुत अनौपचारिक था, पर वो एक मजबूत नेटवर्क बनाने में कामयाब रहे। और तीसरी बात, सफलता को अपने तरीके से देखना। एर्डोस ने पैसे, पद, संपत्ति, इन चीजों को बिल्कुल भाव नहीं दिया।
नहीं।
उनकी खुशी गणित की समस्याओं को सुलझाने में थी, उसकी सुंदरता को खोजने में थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लिए असली सफलता का मतलब क्या है, क्या वो बाहरी चीजें हैं या कुछ और।
बिल्कुल। और चौथी चीज है उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया। मुश्किल सवालों से डरना नहीं, हार नहीं मानना, बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ना और जरूरत पड़े तो अलग अलग तरीके आजमाना।
हाँ, ये रवैया तो जिंदगी के किसी भी चुनौती में काम आ सकता है।
बिल्कुल।
मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सामाजिक रूप से इतने अलग थलग से दिखने वाले इंसान ने दुनिया का सबसे बड़ा कोलैबोरेटिव नेटवर्क कैसे बना लिया।
हाँ, ये कमाल है।
ये दिखाता है कि प्रभाव और जुड़ाव सिर्फ पारंपरिक सोशल स्किल से ही नहीं बनते। अगर आपके पास देने के लिए कुछ कीमती है तो लोग आपसे जुड़ते हैं।
बिल्कुल सही। और मेरे लिए सबसे यादगार पहलू है उनके जीवन का वो एक निष्ठ समर्पण, मतलब एक जुनून के लिए सचमुच सब कुछ दांव पर लगा देना। उनकी कहानी हमें नॉर्मल जिंदगी की परिभाषा पर सवाल उठाने को कहती है।
हाँ,
शायद मुख्य सबक यही है कि प्रतिभा कई रूपों में आती है, सहयोग में जबरदस्त ताकत है, और अमूर्त विचारों की खोज भी एक सार्थक जीवन का आधार बन सकती है।
तो पॉल अर्डोक्स की कहानी हमें सिर्फ एक गणितज्ञ के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी जुनून और समर्पण की हदें क्या हो सकती हैं।
और शायद ये भी कि एक पूरा जीवन, एक सफल जीवन जीने के मायने क्या हैं? क्या वो सिर्फ बाहरी मानकों से ही तय होता है, या किसी गहरे आंतरिक उद्देश्य को पालने से? ये एक सवाल है जो एड्रोस की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।